एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये हमारी डिजिटल जिंदगी को, मतलब जो आजकल हम जी रहे हैं, उसे समझने में काफी मदद करती है।
हाँ, किताब का नाम है सहयोगी समाज यानी कोलैबोरेटिव सोसाइटी, और इसे लिखा है अलेक्जेंड्रा प्रिजगालिन्स्का और डारियोश जेमिलियाक ने।
और ये टॉपिक आजकल इतना रेलिवेंट क्यों है, है ना?
बिल्कुल, क्योंकि देखिए, हम सब ये महसूस तो कर ही रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, खास तौर पे ये इंटरनेट और स्मार्टफोन वाली दुनिया, हमें कहीं ना कहीं बदल रही है। चीजें आसान हुई हैं, वो तो है, कनेक्टेड रहना भी आसान हुआ है।
हाँ, पर एक बेचैनी सी भी है, जैसे क्या हम इन ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स के सिर्फ ग्राहक हैं, या कहीं कहीं हम खुद ही प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं?
सही सवाल है। और ये जो बड़े अच्छे नाम वाली शेयरिंग इकोनॉमी है, जैसे वो कैब वाली ऐप्स या घर किराए पर देने वाले प्लेटफॉर्म्स,
हाँ, सुनने में कितना अच्छा लगता है शेयरिंग,
है ना? पर क्या ये वाकई साझा करने की भावना पर टिकी हैं, या ये बस मतलब एक नया तरीका है कुछ बड़ी कंपनियों के लिए पैसा कमाने का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके?
और अक्सर इसमें जो लोग काम करते हैं उनकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल, ज्यादा अनिश्चित हो जाती है।
बिल्कुल, तो यही वो सवाल है जो ये किताब उठाती है। टेक्नोलॉजी और खासतौर से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे समाज को कैसे बदल रहा है? क्या ये हमें ज्यादा जोड़ रहा है, साथ मिलकर काम करने में मदद कर रहा है, या फिर हमें और अकेला कर रहा है, एक दूसरे से मुकाबला करने पर मजबूर कर रहा है?
हाँ, ये किताब इन सवालों में गहराई तक जाती है, और सिर्फ समस्या ही नहीं बताती बल्कि एक अलग रास्ता भी दिखाने की कोशिश करती है।
तो चलिए पहले लेखकों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अलेक्जेंड्रा प्रिजगालिन्स्का, ये पोलैंड की एक जानी मानी फ्यूचरिस्ट हैं, भविष्य के बारे में सोचती हैं, प्रोफेसर भी हैं,
और उनका फोकस टेक्नोलॉजी के इंसानी पहलू पर है। वो MIT जैसी जगहों से भी जुड़ी रही हैं। उनकी स्पेशलिटी है AI और समाज का रिश्ता, मतलब वो ये देखती हैं कि तकनीक हमारी पहचान, हमारे रिश्तों पर क्या असर डाल रही है।
दिलचस्प बात यह है कि उनकी बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में भी है और सोशल साइकोलॉजी में भी।
हाँ, तो वो टेक को सिर्फ मशीन की तरह नहीं देखती, वो समझती हैं कि इंसान इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका समाज पर क्या असर होता है।
और दूसरे लेखक हैं डारियोश येमेलनियाक, ये मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं और हार्वर्ड के बर्गमन क्लेन सेंटर से भी जुड़े हैं।
इनका खास काम है ऑनलाइन कम्युनिटीज पर, जैसे विकिपीडिया। इन्होंने विकिपीडिया के अंदर रहकर, मतलब उनके बीच काम करके उसे समझा है, जिसे एथनोग्राफिक स्टडी कहते हैं। इस पर किताब भी लिखी है उन्होंने।
तो सोचिए, एक तरफ एआई और टेक की गहरी समझ,
और दूसरी तरफ ये समझ कि लोग ऑनलाइन दुनिया में कैसे साथ आते हैं, कैसे नियम बनाते हैं, कैसे बिना किसी बॉस के मिलकर कुछ बड़ा बना डालते हैं।
हाँ, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यही इनके नजरिए को खास बनाता है।
सही कहा, ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, इन्हें डिजिटल दुनिया की जमीनी हकीकत पता है। इसीलिए जब ये आज के डिजिटल समाज की आलोचना करते हैं और एक विकल्प सुझाते हैं, तो उनकी बात में दम लगता है।
तो ये किताब असल में करती क्या है? ये आज का जो डिजिटल इकोनॉमी का सिस्टम है, जिसे अक्सर बड़े अच्छे अच्छे नाम दिए जाते हैं,
हाँ बिल्कुल, लुभावने नाम।
उसका पर्दाफाश करती है, और साथ ही एक ज्यादा इंसानी, ज्यादा सहयोगी भविष्य का कह सकते हैं एक नक्शा पेश करने की कोशिश करती है।
बिल्कुल, ये शेयरिंग इकोनॉमी के जो सुनहरे वादे हैं ना, उनके पीछे की सच्चाई बताती है। ये दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अक्सर काम करने वालों के शोषण और हमारे आपसी भरोसे को तोड़ने के लिए हो रहा है।
किताब का पहला और शायद सबसे जोरदार तर्क यही है, हम जिसे शेयरिंग इकोनॉमी समझ रहे हैं, वो असल में, किताब कहती है, एक धोखा है। ये है प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म।
प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म,
हाँ, यहाँ टेक्नोलॉजी, खास तौर पर एल्गोरिथम्स और एआई, लोगों को ताकत नहीं देती, बल्कि उन्हें कंट्रोल करती है और उन्हें एक नए तरह का असुरक्षित कामगार बना देती है।
और सारी कमाई, सारी ताकत वो कुछ गिने चुने प्लेटफॉर्म मालिकों के हाथ में चली जाती है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि किताब सिर्फ प्रॉब्लम बताकर रुक नहीं जाती।
नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा अहम आइडिया ये है कि एक बेहतर रास्ता हो सकता है, वो है सहयोगी समाज का रास्ता। ये एक विजन है, एक सोच है कि टेक्नोलॉजी, खासकर AI को जानबूझकर ऐसा बनाया जाए कि वो इंसानों के बीच असली सहयोग को बढ़ावा दे, भरोसा बनाए, मिलकर कुछ अच्छा बनाने में मदद करे, सिर्फ मुनाफा निकालने में नहीं।
और यहीं पर तीसरा पॉइंट आता है, इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी, है ना?
बिल्कुल, हमें सिर्फ लेन देन वाले रिश्तों से जहाँ प्लेटफॉर्म बस बिचौलिए बनकर पैसा कमाते हैं उससे आगे बढ़ना होगा। किताब इसे कहती है गहन सहयोग या थिक कोलैबोरेशन।
गहन सहयोग मतलब?
मतलब सिर्फ काम निपटाने वाले रिश्ते नहीं, बल्कि ऐसा गहरा जुड़ाव जहां समुदाय हो, आपस में तय किए गए नियम हो, भरोसा हो, और इसमें इंसान और एआई साथी बनकर काम कर सकते हैं।
अच्छा, और चौथा संदेश?
चौथा संदेश है कि ये बदलाव अपने आप नहीं आएगा, हमें इसे समझना होगा और इसे सही दिशा देने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा।
हाँ, तभी हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जो ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले, नई चीजों को बढ़ावा दे और मुश्किलों का सामना कर सकें। मतलब एक ऐसा समाज जो सिर्फ मशीन की स्पीड नहीं बल्कि इंसान की भलाई को पहले रखे।
बिल्कुल, चलिए अब इन आइडियाज को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। पहला मुद्दा था ये प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म क्या बला है और ये असली सहयोग से अलग कैसे है।
हाँ, किताब कहती है ये शेयरिंग यानी साझा करना नहीं बल्कि एक्सेस यानी किसी चीज तक पहुंच देना और उस पहुंच को कंट्रोल करना है।
उबर का उदाहरण ही ले लीजिए, हमें लगता है कि ये ड्राइवरों और यात्रियों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है, सीधा साधा।
हाँ बिल्कुल,
पर किताब कहती है नहीं, ये असल में एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी है और उसका बॉस कौन है? एक एल्गोरिदम।
एल्गोरिदम बॉस?
हाँ, वो एल्गोरिदम ही तय करता है बहुत कुछ, और गाड़ी का खर्चा, मेंटेनेंस, बीमा सब ड्राइवर पर। ऊपर से वो रेटिंग सिस्टम का कंट्रोल, कहने को ड्राइवर आजाद पार्टनर है पर असल में एक अनदेखे बॉस के इशारों पर नाच रहे हैं।
और इसी से वो हालत पैदा होती है जिसे किताब प्रिकेरिटी कहती है, मतलब लगातार बनी रहने वाली असुरक्षा।
हाँ, ऊपर से लगता है कि अरे वाह कितना लचीलापन है, जब मर्जी काम करो, पर असलियत कमारी का कोई ठिकाना नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। भारत में तो हम अपने आसपास कितने ऐसे लोगों को देखते हैं ना, डिलीवरी वाले लड़के, ऐप वाली टैक्सी के ड्राइवर।
बिल्कुल, रोज की कहानी है ये। पर क्या इसका मतलब ये है कि सहयोग मुमकिन ही नहीं है?
नहीं नहीं किताब याद दिलाती है कि इंसान तो हजारों सालों से सहयोग करते आए हैं, ये हमारी फितरत में है। असली सहयोग सिर्फ पैसे के लेन देन पर नहीं बल्कि गहरे रिश्तों और भरोसे पर टिका होता है।
और प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म शायद इसी भरोसे को कमजोर करता है।
बिल्कुल, वो रिश्तों को बस लेन देन तक सीमित कर देता है। तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी के मुनाफे वाले इस्तेमाल की बात, लेकिन क्या इसी टेक का कोई दूसरा ज्यादा पॉजिटिव पहलू भी हो सकता है?
हाँ, यहीं पर एआई की वो दोहरी भूमिका वाली बात आती है ना।
एग्जैक्टली, प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म में एआई का इस्तेमाल अक्सर होता है नजर रखने के लिए, काम को कंट्रोल करने के लिए और हर चीज से ज्यादा पैसा निचोड़ने के लिए। एल्गोरिदम तय करते हैं कि किसे काम मिलेगा, कितनी देर में करना है, कितना पैसा मिलेगा।
डरावना है थोड़ा।
है, लेकिन लेखक कहते हैं कि एआई को अलग तरीके से भी डिजाइन किया जा सकता है।
कैसे, क्या मतलब?
एआई जो हमारी बातचीत को आसान बनाए, गलतफहमियां दूर करें, या किसी ग्रुप को मिलकर बेहतर फैसले लेने में मदद करें, जो हमें कंट्रोल ना करें बल्कि हमारी मदद करें एक साथी की तरह।
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसमें कोई खतरा नहीं?
खतरे तो हैं और किताब उन्हें नजरअंदाज नहीं करती। एआई में बनाने वालों के पूर्वाग्रह, मतलब उनकी अपनी सोच का असर आ सकता है, जिसे बायस कहते हैं।
हाँ, ये तो सुना है।
हम उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल हमारी अपनी सोच, हमारे फैसले लेने की आजादी यानी ह्यूमन एजेंसी का क्या होगा? क्या हम सब कुछ एआई पर छोड़ देंगे?
ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा फिर तो।
बिल्कुल, किताब विकिपीडिया या गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स का उदाहरण देती है, जहां टेक्नोलॉजी सहयोग को मुमकिन बनाती है, वहां लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर भी कुछ नियमों और आपसी भरोसे के आधार पर मिलकर कमाल का काम करते हैं।
हाँ, विकिपीडिया तो कमाल है ही।
वहां प्रतिष्ठा यानी रेप्यूटेशन सिस्टम और सहकर्मी समीक्षा यानी पीयर रिव्यू जैसे तरीके भरोसा बनाने में मदद करते हैं।
और यहीं से बात आती है विश्वास और शासन की, मतलब ट्रस्ट एंड गवर्नेंस, क्योंकि सहयोग की नींव तो भरोसा ही है।
हाँ, किताब दो तरह के भरोसे की बात करती है। एक है पतला भरोसा, थिन ट्रस्ट, जैसे ऐप पर दिखने वाली रेटिंग, बस एक नंबर।
अच्छा,
और दूसरा
है गहरा भरोसा, थिक ट्रस्ट। ये साझा मूल्यों से, नियमों से और एक समुदाय होने की भावना से पैदा होता है, इसमें ज्यादा गहराई होती है।
समझ गया। और ये जो प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म है, ये ज्यादातर पतले भरोसे पर चलता है।
हाँ, रेटिंग देखी, काम किया, भूल है।
हाँ,
लेकिन असली टिकाऊ सहयोग के लिए गहरे भरोसे की जरूरत होती है।
विकिपीडिया दिखाता है कि कैसे पारदर्शिता, खुले नियम, बहस और सहमति बनाने की प्रक्रियाएं
और गलतियों को सुधारने के तरीके,
बिल्कुल, ये सब मिलकर बड़े पैमाने पर भी गहरा भरोसा बना सकते हैं।
लेकिन जब कोई एक बॉस या मैनेजर नहीं है तो इतने सारे लोग मिलकर काम कैसे करते हैं, तालमेल कैसे बनता है?
अच्छा सवाल है। यहाँ संरचित लचीलेपन, स्ट्रक्चर्ड फ्लेक्सिबिलिटी का आइडिया आता है।
संरचित लचीलापन मतलब?
मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों को काम करने की आजादी भी हो, लेकिन साथ ही कुछ नियम और तरीके भी हो जिनसे तालमेल बना रहे, कंफ्यूजन ना हो। तो लचीलापन भी और स्ट्रक्चर भी।
ठीक है, ठीक है।
इसके कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, जैसे लिक्विड डेमोक्रेसी, जहां आप किसी मुद्दे पर अपना वोट किसी जानकार को दे सकते हैं, या फिर DAOs, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन।
DAOs ये क्या है?
सोचिए, ऐसी ऑनलाइन संस्थाएं जो बिना किसी एक बॉस के चलती हैं। उनके नियम कोड में लिखे होते हैं और फैसले सदस्य वोटिंग से करते हैं।
अरे वाह, ये तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है।
हाँ, नया है, हालांकि इनमें भी अपनी चुनौतियां हैं, जैसे कौन किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जवाबदेही कैसे तय होगी, ये सब सवाल है।
और विकिपीडिया का मॉडल बार बार क्यों आता है?
क्योंकि वो एक जीता जागता उदाहरण है कि बिना मुनाफे के बहुत बड़े पैमाने पर मुश्किल जानकारी को जमा करना, व्यवस्थित करना और उसकी क्वालिटी बनाए रखना, ये सब मुमकिन है।
हाँ, ये बात तो है।
उसके सिद्धांत जैसे कि NPOV यानी तटस्थ नजरिया, या वेरिफाइबिलिटी यानी हर बात का स्रोत बताना और उसके काम करने का तरीका, ये सब सहयोगी समाज के लिए एक तरह से एक मॉडल है।
और ये सिद्धांत सिर्फ ऑनलाइन दुनिया के लिए नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनियां और दूसरे संगठन भी तो अपने काम करने का तरीका बदल सकते हैं। वो पारंपरिक ऊपर से नीचे वाले ढांचे से हटकर ज्यादा सहयोगी मॉडल अपना सकते हैं।
जहां ज्यादा पारदर्शिता हो, कर्मचारियों को ज्यादा अधिकार हों, फैसले मिलकर लिए जाएं।
एग्जैक्टली, ये पतले सहयोग से गहरे सहयोग की ओर एक कदम होगा।
और पैसे कमाने के तरीके भी बदल सकते हैं।
हाँ, ऐसे मॉडल भी आ रहे हैं जो सिर्फ मुनाफा निकालने के बजाय साझा मूल्य बनाने पर जोर देते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव्स। सोचिए ऊबर जैसी ऐप, ड्राइवर खुद मिलके चलाएं और मुनाफा आपस में बांटें।
ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
या DAOs जिनका हमने जिक्र किया, ये पारंपरिक बिजनेस मॉडल को चुनौती देते हैं।
लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा, है ना? रास्ते में बहुत मुश्किलें होंगी।
हाँ बिल्कुल, जैसे डिजिटल डिवाइड, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है या उसे इस्तेमाल करने का हुनर नहीं है, वो पीछे छूट सकते हैं।
और गलत इरादे वाले लोग, वो भी तो सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं।
बिल्कुल। फिर प्राइवेसी, हमारी निजी जानकारी की सुरक्षा, ये एक बहुत बड़ी चिंता है।
और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार दूसरों के साथ मिलकर काम करने का एक मानसिक बोझ भी हो? हर कोई टीम में काम करना पसंद नहीं करता।
ये भी एक पहलू है। और ये भी डर है कि कहीं सहयोग के नाम पर लोगों से मुफ्त में काम ना करवाया जाने लगे, जैसे ओपन सोर्स में कभी कभी होता है।
और जो बड़ी कंपनियां पहले से मार्केट पर कब्जा जमाए बैठी हैं, उनसे मुकाबला करना, वो भी तो आसान नहीं।
नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। तो इस पूरी बातचीत से कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए।
हाँ, क्या है वो मुख्य बातें?
पहली, कि टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, वो एक एम्पलीफायर की तरह है, आवाज बढ़ाने वाले यंत्र की तरह। वो हमारी अच्छी आदतों को भी बढ़ा सकती है और बुरी को भी।
मतलब सब इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं।
बिल्कुल। दूसरी बात, सिर्फ सब कुछ बिखेर देना यानी डिसेंट्रलाइजेशन काफी नहीं है। तालमेल बिठाने के लिए यानी कोऑर्डिनेशन के लिए सही नियमों और स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, वही संरचित लचीलापन, वरना गड़बड़ हो सकती है।
ठीक है।
तीसरी, भरोसा। भरोसा ही वो अदृश्य गोंद है जो सहयोग को चिपका कर रखता है, और ये भरोसा पारदर्शिता से, जवाबदेही से और अच्छी साख बनाने से आता है। इसमें टाइम लगता है।
और ये मान लेना कि सहयोगी सिस्टम अपने आप सबको शामिल कर लेंगे, ये गलत है।
हाँ, ये चौथी बात है। डिजाइन करते वक्त सोचना पड़ेगा कि कौन शामिल हो पा रहा है और कौन पीछे छूट रहा है। सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, वो अपने आप नहीं होता।
और पांचवी बात,
कि सफल सहयोग के लिए लगातार सीखते रहना और बदलते रहना जरूरी है। गलतियां होंगी, उनसे सीख कर सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, अडाप्ट करना होगा।
और एआई के जमाने में भी इंसान सबसे जरूरी है ना?
बिल्कुल, ये छठी बात है। एआई और एल्गोरिदम के दौर में भी इंसानी सोच, समझ, फैसले लेने की क्षमता, ये सबसे अहम है। एआई को हमारी मदद करनी चाहिए, हमारी जगह नहीं लेनी चाहिए।
और आखिर में हमें ये समझना होगा कि दुनिया में हर चीज की कीमत पैसे में नहीं होती।
सही कहा, प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म सिर्फ मुनाफा देखता है, जबकि सहयोगी समाज, ज्ञान, समुदाय, आपसी मदद, इन चीजों को भी वैल्यू देता है जिन्हें बाजार अक्सर भूल जाता है।
इस किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार भी हैं जो दिमाग में रह जाते हैं, जिन्हें हम कोट कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे पहला विचार, सहयोग का मतलब ये नहीं कि कोई झगड़ा या असहमति न हो, बल्कि सहयोग का मतलब है उत्पादक असहमति, प्रोडक्टिव डिसएग्रीमेंट का होना।
उत्पादक असहमति मतलब?
मतलब खुलकर लेकिन इज्जत के साथ बहस करना, ताकि सबसे अच्छा आइडिया सामने आ सके। कभी कभी बहस करना चुप रहने से ज्यादा फायदेमंद होता है।
ये बात तो हर जगह लागू होती है, ऑफिस में, घर में, हर जगह। दूसरी दिलचस्प बात,
दूसरी ये कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये न्यूट्रल नहीं होते, तटस्थ नहीं होते, वो उन्हें बनाने वालों के विचारों और मूल्यों को दिखाते हैं।
अच्छा,
सकते हैं उन्हें बेहतर बनाने के लिए दबाव डाल सकते हैं, वो बदल सकते हैं।
मतलब हमारी भी भूमिका है। तीसरा विचार भरोसे और पारदर्शिता से जुड़ा है।
हाँ, बड़े पैमाने पर भरोसा बनाने के लिए पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन अगर जवाबदेही न हो तो पारदर्शिता सिर्फ निगरानी बनकर रह जाती है।
मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि क्या हो रहा है, ये भी जरूरी है कि गलत होने पर किसी की जिम्मेदारी तय हो।
बिल्कुल, ऑनलाइन दुनिया में ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है, हम रोज देखते हैं।
चौथी बात मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगी।
कौन सी?
कि सबसे कामयाब सहयोगी सिस्टम वो होते हैं जो मिलकर काम करना अकेले मुकाबला करने से ज्यादा आसान और फायदेमंद बना देते हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर सिस्टम ही ऐसा हो कि सहयोग करने में आसानी हो, रिवॉर्ड मिले, तो लोग खुद बहुत उस तरफ जाएंगे।
और पांचवा विचार एआई को लेकर,
कि एआई को इंसानी फैसलों की जगह नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इंसानी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। उसे हमारा असिस्टेंट होना चाहिए, बॉस नहीं।
खासकर जहाँ नैतिकता, भावनाएं या मुश्किल इंसानी हालात जुड़े हों, वहाँ एआई की लिमिट समझनी होगी।
बिल्कुल। और छठा, जो एक तरह से पूरी किताब का सार है,
वो क्या है?
इसे शेयरिंग इकोनॉमी कहना बंद कीजिए। इसके असली रूप को पहचानने के लिए इसे प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म कहिए।
हाँ, सही नाम देना जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि हम किसे डील कर रहे हैं।
सही शब्द इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम की जड़ समझने में मदद मिलती है।
तो इन सब आइडियाज का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इन्हें कहाँ लागू कर सकते हैं?
कई जगह। ऑफिस में सोचिए, पारंपरिक बॉस वाले सिस्टम से हटकर टीमों को ज्यादा अधिकार देना, पीयर रिव्यू को बढ़ावा देना, जानकारी को ज्यादा खुला रखना,
और ऐसे लोगों को वैल्यू देना जिनमें मिलकर काम करने का हुनर हो।
हाँ, शिक्षा में भी देखिए, छात्र एक दूसरे को सिखाएं, प्रोजेक्ट साथ मिलकर करें, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप की अचीवमेंट को भी पहचानें, और टीचर सिर्फ लेक्चरर न होकर एक फैसिलिटेटर बने, सीखने में मदद करें।
और अपने आस पड़ोस में, अपने समुदाय में,
वहाँ भी स्थानीय फैसलों में ज्यादा भागीदारी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। आपसी मदद के नेटवर्क बन सकते हैं, पर्यावरण या सुरक्षा जैसी लोकल प्रॉब्लम्स को मिलकर सुलझा सकते हैं।
अनुमान का वी ताइवान जैसा एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि नागरिक टेक की मदद से पॉलिसी बनाने में भी हिस्सा ले सकते हैं। भारत में भी लोकल लेवल पर ऐसे छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, और व्यक्तिगत स्तर पर भी हम सहयोग का हुनर सीख सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज में हिस्सा लेकर या कहीं वॉलंटियर करके।
दूसरों से अलग राय रखते हुए भी इज्जत से बात करना सीखना।
हाँ, और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए दूसरों से जुड़ना, अपना पर्सनल लर्निंग नेटवर्क बनाना।
और बड़े स्तर पर, पॉलिसी लेवल पर भी तो कुछ करना होगा।
बिल्कुल, जैसे भारत में गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लाखों लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बेहतर कानून बनाना, प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव्स जैसे नए मॉडल्स को बढ़ावा देना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या विकिपीडिया जैसे डिजिटल कॉमन्स को सपोर्ट करना।
तो इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही, या सबसे चौंकाने वाली बात?
मेरे लिए शायद दो बातें। एक तो यही कि शेयरिंग इकोनॉमी के नाम पर जो हमें दिखाया जाता है और जो असलियत है, उसमें कितना बड़ा फर्क है, ये किताब उस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। और दूसरी तरफ विकिपीडिया जैसे उदाहरण, वो उम्मीद जड़ाते हैं कि हाँ, बड़े पैमाने पर बिना मुनाफे के भी सार्थक सहयोग सच में मुमकिन है।
मेरे लिए सबसे प्रभावशाली ये सोचना रहा कि भरोसा और सबको साथ लेकर चलना ये अपने आप नहीं होता। इसके लिए हमें जानबूझकर कोशिश करनी पड़ती है, सिस्टम को वैसा डिज़ाइन करना पड़ता है। और ये आइडिया कि इंसानों और एआई दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनकर काम कर सकते हैं, ये भविष्य के लिए एक उम्मीद भरा नज़रिया देता है।
तो आप श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्यों खा?
बिल्कुल।
सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में, चाहे वो हमारा काम हो, हमारा पड़ोस हो या हमारी ऑनलाइन दुनिया हो, कैसे इस प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म के सिर्फ यूजर बने रहने के बजाय सोच समझकर सहयोगी समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? वो एक छोटा सा कदम कौन सा हो सकता है जो हम आज ही उठा सके? सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।